मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 16 मार्च 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने प्यारे नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं शुभम कुमार, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, सौरभ कुमार देवगढ़ झारखंड से हैं, और हर्षित कुमार सिंह आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो शुभम, सौरभ और हर्षित, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने न्यूज एनालिसिस पर। और न्यूज एनालिसिस के तहत रेडियो न्यूज में सच पूछिए तो कुछ विशेष ऐसा है नहीं जिनको लेकर के हम कुछ विस्तार से आपस में बातें कर सकें। फिर भी कुछ बातों की तरफ, एक दो बातें जो छोटी छोटी हैं, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात तो आपने देखा कि मणिपुर और गोवा में जो अभी मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उनको लेकर के एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, और वो विवाद की स्थिति किस तरीके की है इसके बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। खासकर किसे बुलाया जाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, इसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। और सच पूछे तो ये विवाद केवल सरकार के बीच में ही नहीं है, कोर्ट कचहरी के बीच में भी नहीं है, बल्कि काफी कुछ पब्लिक के बीच में भी है। मैं जब भी कहीं जाता हूं और कहीं भी थोड़ी देर के लिए किसी से मिलता हूं और बैठकर बातचीत करते हैं तो यही मुद्दा होता है कि राज्यपाल ने सही किया या गलत किया। देखिए, संविधान की क्या व्यवस्था है, मैं आज से दो दिन पहले इसके बारे में बता चुका हूं। आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप भी पढ़िए, एडिटोरियल कमेंट भी आ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय ही हो सकती है। तो आप भी अपनी तरफ से अपनी राय बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि गवर्नर ने अभी जो कदम उठाए हैं, दोनों गवर्नर ने, देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आप क्या मानते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आप चाहे जो भी स्टैंड लें। बहुत से अभी स्टूडेंट जब हमारी क्लासेज लग रही थी तो आते थे और पूछते थे कि सर इस पर मेरी यह राय है, यूपीएससी से सही मानेगी या गलत मानेगी। मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत साफ तौर पर बताना चाहूंगा मित्रों कि अगर यूपीएससी ने आपकी राय जाननी चाहिए है, इसका मतलब है कि उनकी अपनी कोई राय नहीं है, उनकी अपनी कोई राय नहीं है। यदि उनकी अपनी कोई राय होगी तो वो सीधे कह देंगे कि इसके पक्ष में तर्क दीजिए। चूंकि उनकी कोई राय नहीं है इसीलिए तो वो आपकी राय पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उनकी अपनी कोई राय है ही नहीं, लेकिन उन्होंने ओपन छोड़ रखा है, ओपन छोड़ रखा है। यहां केवल आपको एक काम करना है और यह आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए, और वह यह कि आप जो भी राय रख रहे हैं, जो भी आपकी अपनी ओपिनियन है, वह ओपिनियन लॉजिकल सही हो, उसके लिए आपके पास तर्क हो, उसके लिए आपके पास तथ्य हो, सामग्री हो। और अगर इस तरह का विषय है जो पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है तो बट नेचुरल है कि वह संविधान सम्मत हो और कानून सम्मत हो। यही आपके दो सबसे बड़े हथियार हैं, दो सबसे बड़े प्रोटेक्शन हैं। ये नहीं कि मैं इमोशनली आधार पर, इमोशन को अपने आधार बना करके या एकदम निहायत ही निजी विचारों को आधार बना करके अपनी राय रखूं और अपनी राय के पक्ष में कोई बहुत सॉलिड तर्क न दे पाऊं, या मैं किसी दूसरे के राय का विरोध कर रहा हूं और विरोध करके अगर मैं अपनी राय रख रहा हूं तो फिर दोनों चीजें जरूरी हो जाती हैं कि मैं जो विरोध कर रहा हूं वो बहुत ही तार्किक हूं, उसके लिए मेरे पास तर्क हैं, तर्क के तीर हैं, और मैं जो अपनी स्थापनाएं कर रहा हूं यानी कि मैं जो अपनी राय दे रहा हूं उसको स्थापित करने के लिए भी मेरे पास लॉजिक है। तो इसलिए दोस्तों, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो बहुत ही बर्निंग इश्यूज होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। जैसे गवर्नर और सरकार का ही आप मामला देखिए तो ये पहला, ये नहीं कि अभी 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 ही आया है। इससे पहले भी आप उत्तराखंड के मामले में इसी तरह के विवाद को थोड़े से बदले हुए रूप में देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी आप थोड़े बहुत बदले हुए रूप में देख चुके हैं। तो यह एक ऐसी घटना है राज्यपाल और राज्यों में सरकार के गठन का जो मामला है, केवल गठन का ही मामला नहीं है, फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का भी मामला आता है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला आता है, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए गए जो विधेयक होते हैं उनका भी मामला आता है। तो जहां भी गवर्नर इन्वॉल्व है वहां इस तरह के विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और ये आज की ही बात नहीं है बल्कि शुरू से ये स्थिति चली आ रही है। इसीलिए आपको चाहिए कि इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तैयारी करके आप अपना स्टैंड एस्टैब्लिश कर लें, ये एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करेगा। और यही नहीं बल्कि दूसरे भी जो इस तरह के जो बर्निंग इश्यूज होते हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं, आपको अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। जैसे इसी पर मैं आपको एक इसी संदर्भ में एक और स्टैंड टॉपिक बता देता हूं, हालांकि ये AIR न्यूज में नहीं था लेकिन DD न्यूज में ये था कि आपने देखा है कि अभी एक जो नॉर्थ ईस्ट की जो गायिका है उनको लेकर के एक फतवा जारी किया गया। असम की गायिका है, एक लड़की है 16 साल की है जो नाहिद आफरीन, उसके खिलाफ 46 मौलवियों ने फतवा जारी किया है कि यह खुदा के विरुद्ध है, मतलब अल्लाह के संगीत को नहीं मानते हैं वो, तो यह उसके विरुद्ध है, यह फतवा जारी किया। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दिया है कि मूलतः यह जो फतवा है यह उनके खिलाफ नहीं है कि वो गाएं नहीं, बल्कि जो प्रोग्राम हो रहा था, चूंकि वो प्रोग्राम कब्रिस्तान के पास और मस्जिद के पास हो रहा है तो उसके विरोध में उन्होंने ये बात कही है, चाहे सच जो भी हो। लेकिन आप देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ बात लगातार होती रहती है, राइट। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या मानते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह होनी चाहिए, किस सीमा तक होनी चाहिए, क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए अगर, तो संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, आप इसकी व्याख्या किस तरीके से करते हैं, अगर पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाए तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ठीक इसी तरह से यदि उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए तो उसके क्या अच्छे परिणाम और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ज्यादा नहीं, आपको कोई बहुत इस पर ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, कोई बहुत 50-20-25 पेज का कोई तर्क इकट्ठा नहीं करना है, सीधी सी बात है कि दो दो चार चार पॉइंट दोनों के सबके पक्ष में आपके पास हो, और इसके बाद आप अपना उस पर स्टैंड एस्टैब्लिश कर लीजिए कि आप क्या समझते हैं, बस दैट्स ऑल। सिविल सर्विस की तैयारी आपको इसी पैटर्न पर करनी चाहिए। मित्रों, जो न्यूज में दूसरी बात थी वो डिजिटल इंडिया को लेकर के थी, वो कोई खास बात नहीं थी, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व उपभोक्ता दिवस है उस पर डिजिटल इंडिया की बात भी उन्होंने कही है, और आपको मालूम है कि डिजिटल इंडिया तो भारत का भी बहुत ही एक तरह से फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसा है, डिमोनेटाइजेशन उसी की दिशा में उठाया गया कि बहुत ही जबरदस्त कदम है। तो यह एक ऐसा टॉपिक है डिजिटल इंडिया जो आप परमानेंट आपके रजिस्टर में जिसे स्थान मिलना ही चाहिए। मित्रों, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज से बस यही दो ही पॉइंट मुझे आपको बताने के लिए मिले हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा न्यूज पेपर्स पर और न्यूज पेपर से बियॉन्ड भी। मित्रों, डीडी न्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, खासकर नीति आयोग को लेकर के, कि नीति आयोग ने हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है, हमारी जो स्वास्थ्य नीति है, उसके बारे में सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है। हालांकि उसमें भी बहुत डिटेल में बातें नहीं बताई गई थी, उसमें ये जरूर शो कर रहा था लिख करके कि उसके लिए उन्होंने उपकर लगाने का सुझाव दिया है। जैसे देखते हैं ना, शिक्षा पर उपकर लगा हुआ है, स्वच्छता संबंधी उपकर लगा हुआ है, कब कर के ऊपर टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगाया जाना, जो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा उपकर लगाया गया तो उस टैक्स का कलेक्शन जो भी होगा उसे शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। स्वच्छता उपकर सेस जिसको CESS कहते हैं, तो जो कलेक्शन होगा उसको स्वच्छता पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य उपकर की बात कही है, लेकिन अभी अखबारों में नहीं आया है। एक अखबार में था, हिंदी के एक अखबार में था, उसमें बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ था, लेकिन बहुत स्पष्ट मेरे दिमाग में भी पढ़ने के बाद नहीं हो पाई, चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त जैसी उसमें दी हुई थी। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली इस पर चीजें आएंगी, मुझे उम्मीद है कि इस पर चीजें आएंगी, लेख भी आएंगे, एडिटोरियल कमेंट भी आएंगे। तब मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर हेल्थ पर। आप देखें कि सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत तो इस संकट से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। हमारा जो स्वच्छता अभियान है वो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड ही प्रोग्राम है कि स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। आप देख रहे हैं कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब होती चली जा रही है, सबके सब प्राइवेट के हाथों में होता चला जा रहा है। जो सरकारी स्वास्थ्य योजना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति होती चली जा रही है। और जब भी इस देश के पुनर्निर्माण की बात आती है या विकास की बात आती है तो आपको ध्यान होगा कि तीन चार बातें जो हमारी योजनाकार हैं वो बहुत प्रोमिनेंटली सुझाते हैं जो भारत में मूलभूत परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उसमें एक होता है शिक्षा, कि शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाए। आप देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर भी हमारा धीरे धीरे खराब होता चला है, सरकारी शिक्षा का स्तर। तो नतीजा क्या हो रहा है कि गरीब लोग भी प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं जहां वो 400-500 रुपए की फीस देते हैं, बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर, और वो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। सरकारी शिक्षा सरकारी जो स्कूल है उनका स्तर गिरता चला जा रहा है। दूसरा सुझाया जाता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य तो इनफैक्ट बहुत बड़ा इश्यू है भी। अमेरिका जैसे देश में आपने देखा कि ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो ओबामा हेल्थ केयर प्रोग्राम लेकर के आए, वो जिसे अभी ट्रंप जी ने, आपको ध्यान होगा कि उसको अब उन्होंने खारिज भी कर दिया है। क्योंकि स्वास्थ्य होता क्या है कि आप उनके बारे में सोच करके देखिए कि जो एबव पॉवर्टी लाइन है, बिल्कुल एबव पॉवर्टी लाइन तो है लेकिन वो बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल संक्रमण लाइन पर खड़े हैं। जरा सा भी स्वास्थ्य खराब हुआ तो पता लगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए, और अब चूंकि एबव पॉवर्टी लाइन में थे तो बिलो पॉवर्टी लाइन का ये तो नहीं है कि रोज उनके कार्ड बदले जाएंगे। एक आदमी बीमार पड़ा, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा, पूरा का पूरा बजट फेल हो गया, और चूंकि उनकी कमाई का आधार भी उनका शरीर ही होता है जिससे वो श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं और कमाई होती है, तो पता लगा कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक तरफ तो कमाई बंद हो गई है, दूसरी तरफ खर्च बढ़ गए हैं, तो पता लगा वो बीपीएल में चला गया, और फिर उसको एपीएल में लाने एबव पॉवर्टी लाइन में लाने में बहुत टाइम लगता है। स्वास्थ्य हमारा दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है जिसको लेकर के नीति आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, रिकमेंडेशन होंगी। आपको जहां भी इस पर सामग्री मिलती है आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। अखबार में मैंने जो थोड़ी सी बात जो समझ पाया हूं मैं, और ये सही समझ है कि सरकार सोच रही कि सभी को, हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको एक बीमा योजना के तहत लाया जा सके, अनिवार्य बीमा योजना के तहत अगर सरकार उनको ले आएगी तो कम से कम एक तो बहुत अच्छी बात होगी कि हेल्थ केयर मिलने लगेगी। दूसरी है कि वो जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उनकी स्थिति बेहतर की जाए। तो ये दो बातें तो मेरी समझ में आई हैं। तीसरा यह है कि इसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए उपकर लगाई जाए, लेकिन जैसे ही और चीजें पता लगेंगी नहीं लगेंगी तो लगाया जाएगा, ऐसी क्या बात है। मैं इस पर आपसे कभी डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज मैं आपको काफी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब मेरी दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट हैं ही, आप अपने हिसाब से उसका चयन कीजिएगा। इसमें मित्रों एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट है जो खासकर जस्टिस को ले जुडिशरी को लेकर के है, स्पीड ऑफ जस्टिस, मतलब जो न्याय है उसमें अब तेजी लाई जाए। और जो तीसरा तत्व तो मैं आपको बता रहा था, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है न्याय, जस्टिस। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, जस्टिस आप देखिए कि जस्टिस में तो एक ऐसी चीज है कि सरकार केवल लॉ बनाकर एक्ट ला करके इसकी स्थितियों को बहुत बेहतर कर सकती है। जैसे अगर शिक्षा के बारे में हम सोचें तो बटने जिले के उसमें तो बहुत बजट की जरूरत पड़ेगी, स्कूल खोलने हैं, टीचर्स की भर्ती करनी है, उसका स्तर बढ़ाना है, हेल्थ में भी बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। जस्टिस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, आपको केवल एक्ट लाना है, कुछ ऐसे कठोर कानून बना दीजिए, ऐसे माइलस्टोन बना दीजिए कि जस्टिस होने लगेगा कि कोई भी 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ होगा, और अगर 6 महीने के अंदर वकील अपने साक्ष्य जो भी है नहीं जुटा पाता है तो खारिज कर दिए जाएंगे या फैसला दे दिया जाएगा। इस तरह के तो एक्ट लाने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बहुत से डेवलप्ड कंट्री में भी हैं और आपके अरबिक देशों में भी इस तरह के कानून हैं, तो देखिए कैसे फटाफट जस्टिस होने लगेगा। फिर कानून केवल जो अभी एक तरीके से कह लीजिए कि धनी लोगों की धरोहर बनी हुई है वो नहीं होगी, उसमें लोगों को आस्था बढ़ेगी, और जहां कानून काम करने लगता है मित्रों। मान करके चलिए कि समाज में दूसरी व्यवस्थाएं अपने आप अकॉर्डिंगली होने लगती हैं, क्योंकि जब लगता है कि नहीं कानून तो हम अपने पक्ष में कानून को तो कर लेंगे या उसको डिले करके 20 साल तो निकाल देंगे या वो इतना महंगा है कि ये क्या लड़ेगा हमारे सामने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, तो मैं उसको तोड़ने का साहस करूंगा, दुस्साहस करूंगा, क्योंकि सामने वाला मेरे सामने असहाय है। न्यायपूर्ण होते हुए भी वो असहाय सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास जस्टिस का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है। तो बहुत से ऐसे कदम हैं जो बड़े आराम से जस्टिस एक्ट ला करके जस्टिस को स्पीड अप किया जा सकता है। इसी एडिटोरियल में आप दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट में जो केसेस पड़े हुए हैं उसमें से 70% केसेस तो सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 70% सरकार के खिलाफ ही लोग लड़ रहे हैं। और मजेदार बात है कि सरकार के खिलाफ सरकारी लोग लड़ रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे। तो कम से कम ये एक ऐसा भाग है जिसमें सरकार अपने कानूनों को दुरुस्त करके, अपनी स्थितियों को बेटर करके कोर्ट के बोझ को हल्का कर सकती है, बड़े आराम से हल्का कर सकती है। खासकर ये जो एडिटोरियल लिखा गया है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दो पॉइंट है मैं आपको वो आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, वो ये है कि आपको मालूम है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो नियुक्ति होती है वो एक कॉलेजियम के द्वारा होती है, जुडिशरी करती है, उसके जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स हैं यानी कि जो प्रक्रिया है कह लीजिए सरल भाषा में, उसमें अभी दो परिवर्तन किए गए हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है सरकार की मांग को। और उसमें पहला तो ये है कि सरकार, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट फाइल भेज देती है सरकार के पास कि इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जाए, सरकार उन्हीं में से कुछ लोगों को एक्सेप्ट करती है। अब जो किया गया है, सरकार के इस बात को मान लिया गया है, इस कॉलेजियम ने मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि अगर किसी जज के खिलाफ कुछ राष्ट्र सुरक्षा का मामला बनता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो सरकार दलील देते हुए, बकायदे अपने तर्क देते हुए उसके नाम को अस्वीकार कर सकती है। फर्स्ट जो एमओपी में चेंजेस हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स यानी कि अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें जो चेंज हुए। दूसरा यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वो स्वीकार कर उन्होंने कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में और हमारे सभी हाई कोर्ट का अपना अलग अलग सचिवालय होगा और उस सचिवालय में वो बकायदे डेटा रखेंगे, जो भी जजेज हैं उन जजेज का वो डेटा रखेंगे, उनकी पूरी पृष्ठभूमि, उनके दूसरे डेटा, सारी चीजों का कलेक्शन रखेंगे। और जब इनकी नियुक्ति होगी तो उस नियुक्ति के दौरान ये जो डेटा, जो आंकड़े होंगे वह नियुक्ति में मदद करेंगे, मतलब डेटा उसके साथ लगाया जाएगा। तो ये देख दो अच्छे परिवर्तन एमओपी में, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स में किए गए हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त और बहुत से प्रेस क्लिपिंग्स हैं, मैं सब पर बात नहीं कर पा रहा हूं और आप पढ़ करके उसे बड़े आराम से समझ लेंगे, वक्त भी इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, किशन मेवाड़ा जो पालीताना गुजरात से हैं, प्रनेश शितोले, अर्जुन सूर्यवंशम, विशाल गुप्ता पानीपत हरियाणा से हैं, हेतराम प्रजापत जयपुर से हैं, अब्दुल कादिर मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और दिवाकर कुमार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।